मुनिभिरु पासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञान तिम्रान ध्यानान ज्ञानान जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः परम गुरुभ्यो नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकम् शेयशाम परिवर्धकम् धर्म संबंधकम् भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र अपरनाम मोक्ष शास्त्र नाम ध्येयम् असमूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनोनुसार मासाद्य श्रीमद् उमा स्वामी आचार्य देवैर्विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम् कोटिशतम् द्वादशैव कोट्यो लक्षणान्यशीतिष्ठधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतश्रुतम् पञ्चपदम् नमामि अरिगन्तभासि यत्थम् गणकरदेवे गन्त्यम् सम्मम् प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदना नम गो वयम सिरसा इच्छाएं भंते सुद भक्ति का उत्सव गो को दस सालो चिम अंगो बंगो पहिने पाहुने परियम्मी सुत पणिमाणी ओ गुरु गए तुली आचे सुत सहित विधम कायम सयान चुकालम अंचिमी पूजिमी वंदामी नमन सामी दुख को कम खो वो इलाओ सुगे नम समय मनम जन्म संपत्ति नमोस्तु पूर्वाणि श्री साध्य विलायम श्री आचार्य कह आरोग्येभ्या सपरमत विभावना पटुमतीभ्या सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या छत्तीस गुण सम्मग्गे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुगे कुशले धम्मायरिय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेनया तरन्ति संसार सायरं घोरं शिन्नन्ति अच्युकं जन्म मरणं न पावीन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधुवा शीलप्राभरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोधिका मोक्षद्वारकपाटपाटनघटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितारणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाएं भन्ते आयरी भक्ति का हो सको को तो सालोचन समनान समुदन समचर युतान पंच विहाचारण आयरियानम आयरादिशुनान उपदेशानम उध्यायानम चिरण गुण पालन रयानम सब साहुनम सयानिच कालम अंचिमे पूजिमे वंदामि नमन सामी दुख को कम को वैलाव सुगे उनम समय उनम जीवनम मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्म भूभ्रतां यातारं विश्वतत्वानां वंदे तदगुणलब्धये। बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य उमा स्वामी महाराज की आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज निश्चिंतता तो होनी चाहिए, निश्चिंतता कर लीजिएगा। आज ये सत्वार सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज के द्वारा लिखा गया, इसके आठवें अध्याय पर हम विशेष जानने की कोशिश करेंगे। जैन धर्म में जीव और कर्मों के बीच के संबंध को ही बंध कहा है। जब आश्रय होता है, आत्मा में कर्म आते हैं, तब वे एक निश्चित अवधि तक आत्मा के साथ रहते हैं, वो बंध की अवस्था कहलाता है। कुछ कर्म हैं जो हम निरंतर करते रहते हैं, कुछ कर्म हैं जिनका कि हम फल निरंतर भोगते रहते हैं, और कुछ कर्म हैं जो कि निरंतर आत्मा के साथ बंधते रहते हैं। ये तीनों प्रक्रियाएं बंध के बारे में चलती हैं। कर्म बंधते भी हैं, कर्म का फल भोगने में आता है, और कर्म हम करते भी रहते हैं। जो आत्मा के साथ सूक्ष्म पुद्गल वर्गणाएं एकमेक हो जाती हैं दूध पानी की तरह, वो जो संश्लेष संबंध है वो द्रव कर्म कहलाते हैं, और जिन परिणामों के द्वारा ये द्रव कर्म बंधते हैं वो परिणाम भाव कर्म कहलाते हैं। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये सब भाव कर्म कहलाते हैं। और कर्म के बंध में जो कारण बनते हैं या कर्म का फल जिसके माध्यम से हमें मिलता है वो नो कर्म कहलाता है।
ये शरीर ही नो कर्म है, और अन्य जो चीजें हैं वे इस नो कर्म की भी नो कर्म है, जिनके माध्यम से जिनके निमित्त से हम कर्म का फल भोगते हैं। शरीर ना हो तो कर्म का फल भोगने का कोई उपाय नहीं है। पर ऐसा कभी नहीं होता है, संसारी अवस्था में जीव के शरीर तो लगा ही हुआ है। बंध की प्रक्रिया विभिन्न गुण स्थानों में अलग अलग परिणामों के द्वारा होती है, पर वास्तव में मन वचन काय की क्रिया के द्वारा कर्मों का आश्रय होता है, और कषाय के माध्यम से उसकी स्थिति और अनुभाग। स्थिति मतलब कितने समय तक वो आत्मा के साथ रहेगा, और जब उदय में आएगा तो कितनी ताकत वाला फल देगा, ये अनुभाग कहलाता है। ड्यूरेशन और पोटेंशियलिटी, मन वचन काय की क्रिया जो योग है, उस योग के माध्यम से कर्म निरंतर आत्मा के साथ अपने एक निश्चित संख्या में और एक निश्चित क्वालिटी के आते रहते हैं। इस तरह मुख्य रूप से तो बंध के दो ही कारण हैं, योग और कषाय। पहले सूत्र में जो बंध के कारणों की बात की जाएगी वो गुण स्थान की अपेक्षा से होगी। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवा। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांच बंध के हेतु हैं। मिथ्यात्व के उदय में बंध होता है, इसलिए मिथ्यात्व भी बंध का एक हेतु है। मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व का बंध होता है, इसलिए मिथ्यात्व भी पहले गुणस्थान में बंध का हेतु है। फिर से दोहरा दिया मैंने, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। पहले गुणस्थान से लेकर के पांचवें गुणस्थान तक जो अविरति है, उस अविरति की अवस्था में कर्म का बंध अलग अलग प्रकृतियों का अलग अलग प्रकार से होता है, इसलिए अविरति को भी बंध का हेतु माना गया है। छठे गुण स्थान में प्रमाद के वजह से कर्म का बंध होता है, मुख्यता प्रमाद की है, इसलिए प्रमाद को भी बंध का हेतु कहा गया है। सातवें गुण स्थान से लेकर के और दसवें गुण स्थान तक संजुलन कषाय के निमित्त से जो कर्म का बंध होता है, वहां पर कषाय निमित्त है, इसलिए कषाय बंध का हेतु है। और दसवें गुण स्थान के ऊपर कषाय से रहित जो जीव हैं उनके एकमात्र योग के द्वारा जो कर्मों का आश्रय और बंध होता है, इसलिए योग को बंध का हेतु कहा गया है। इस वाले सूत्र को इसी तरह से व्याख्यायित करना श्रेष्ठ है, क्योंकि आगे आने वाले सूत्र में स्पष्ट करेंगे कि बंध तो कषायवान जीव के कषाय और मन वचन काय की प्रवृत्ति से ही होता है। ये विभिन्न गुण स्थानों में विभिन्न भावों के माध्यम से बंध होता है, इसलिए मिथ्यात् अविरति प्रमाद कषाय और योग को भी बंध का हेतु कहा गया है। मिथ्यात् किसे कहते हैं? सच्चे देवगुरु शास्त्र का या तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं होना मिथ्यात् है। उस मिथ्यात् की अवस्था में ही मिथ्यात् का बंध होता है, उसके उदय में ही मिथ्यात् बंधता है, इसलिए मिथ्यात् भी मिथ्यात् के बंध में हेतु है। पहले गुणस्थान तक ही ये हेतु काम करता है, इसके बाद इस हेतु का कोई काम नहीं है। पहले गुणस्थान में मिथ्यात् है, इसलिए मिथ्यात् बंध का हेतु पहले गुणस्थान में ही है, बाकी गुणस्थानों में नहीं, इसलिए ये बंध के हेतु गुणस्थान पर रखी है, हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अविरति जीवों के प्रति दया का भाव नहीं होना और इंद्रिय के विषयों में आसक्ति होना, इसका नाम है अविरति। और ये अविरति कहां तक चलती है? तो पहले गुणस्थान से लेकर के पांचवें गुणस्थान में देशव्रत हो जाता है, पर अभी उसके स्थावर जीवों के हिंसा का त्याग नहीं है, इसलिए उसे भी अविरति माना है। पांचवें गुणस्थान तक अविरति चलती है। प्रमाद के मायने होता है नेग्लिजेंस। प्रमाद के मायने होता है जो उचित कार्य है उसके प्रति आदर का भाव ना होना। कुशलेषु अनादरः प्रमादः। जिस जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य के प्रति उपेक्षा का भाव हो जाना, ये प्रमाद है। या कि आत्मा से विमुख होकर के पांचों इंद्रियों की ओर चले जाना, या आत्म कथा की जगह पर विकथा में लग जाना, या कि निष्कषाय आत्मभाव को प्राप्त न होकर के कषायवान हो जाना, या कि आत्म जागृति की जगह पर निद्रा में लीन हो जाना, आत्म प्रेम की जगह पर पदार्थों से प्रेम करना, ये सब 15 प्रकार का प्रमाद होता है। 4 कषाय, 4 विकथाएं, 5 इंद्रियों के विषय और निद्रा और प्रणय। इस प्रकार ये नेग्लिजेंस, जो कर्तव्य था उस कर्तव्य से विमुख हो जाना, उसमें आदर भाव नहीं होना, यही प्रमाद है। ये छठे गुण स्थान में आत्मा से च्युत होकर के जो बाह्य कार्यों में लगे हुए साधक हैं, उनके लिए ये प्रमाद भी बंध का कारण होता है। कषाय संजुलन कषाय, जो आत्मा की पवित्रता का नाम तो अकषाय है और आत्मा की अपवित्रता का नाम कषाय है। अगर ऐसी परिभाषा कषाय की करें तो भी कोई हर्जा नहीं है। कषाय के द्वारा परिणामों की निर्मलता हमारी विचलित हो जाती, हमारा आचरण विकृत हो जाता है। यहां पर संजुलन कषाय सबसे मंद कषाय मानी गई है। उस संजुलन कषाय की स्थिति में संयम तो बना रहता है, लेकिन कर्मों का आश्रय होता रहता है, इसलिए कषाय भी यहां पर बंध का हेतु है। और मन वचन काय के माध्यम से होने वाले योगों के मन वचन काय के माध्यम से होने वाले आत्मा के प्रदेशों के परस्पंदन का नाम योग है। उस योग के द्वारा, सिर्फ योग के द्वारा आश्रय होता है 11वें गुणस्थान में। ये व्यवस्था वहां की है। इस तरह इस सूत्र से हमने क्या समझा? हमारे परिणामों की जैसी अवस्था होती है वैसा ही कर्मों का बंध निरंतर जीव के होता रहता है। गुणस्थान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मोह और योग की तरतमता का नाम गुणस्थान है। जितना जितना मोह कम होता चला जाता है, जितनी जितनी मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति से बचते हैं, उतना उतना गुणस्थान ऊपर बढ़ता चला जाता है। असल में भावों की तरतमता का नाम ही गुणस्थान है। मिथ्यात् भाव में पड़े हुए जीवों का पहला मिथ्यात् गुणस्थान है, और जो सम्यक दर्शन से युक्त हो जाते हैं तो सीधा उनका चौथा गुणस्थान हो जाता। व्रत नियम संयम ले लेते हैं, देश व्रत ले लेते तो पांचवा गुणस्थान, सकल व्रत ले लेते तो छठा सातवां गुणस्थान हो जाता। नीचे गिरते हैं, मिली जुली श्रद्धा होती है तो तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात् का है, और अगर सम्यक दर्शन से च्युत ही हो गए तो सासाधन सम्यक दृष्टि नाम का दूसरा गुणस्थान है, जहां से गिर करके फिर पहले गुणस्थान में आया जाता है। और कोई जीव जो है और अपने परिणामों की विशुद्धि इतनी करे कि अपूर्व अपूर्व परिणाम उसके होने लगे और श्रेणी चढ़ जावे तो आठवां गुणस्थान होता है, और श्रेष्ठ परिणाम हो जाए तो नौवां गुणस्थान, दसवें में जाकर के वो अपनी कषायों को शांत कर देता है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म कषाय जहां शेष रह गई और उसके बाद कषायों का अगर उपशम करके चढ़ता है तो ग्यारहवें गुण स्थान में पहुंचता है, उपशम न करके छह करके चढ़ता तो बारहवें में सीधा पहुंचता, बारहवें में पहुंचने पर समस्त चार घातीय कर्मों का क्षय करके और केवल ज्ञान को प्राप्त होता सो तेरहवां गुण स्थान कहलाता, और केवल ज्ञान के अंत में दो शुक्ल ध्यान करके और एक लघु अंतर मुहूर्त में और जो योग का निरोध करने की अवस्था है वो चौदहवां योग केवली गुण स्थान है, और उसके बाद तो आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त हो जाती है, गुण स्थान अतीत हो जाती है। ये शॉर्ट में गुण स्थान समझने की प्रक्रिया है और इनके डिटेल्स तो बहुत हैं, इनको अपन को जानना चाहिए। सकसायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सबंधा, बंध की परिभाषा बहुत स्पष्ट कर दी कि कषाय सहित होने से जीव जो कर्मों के योग पुद्गल वर्गनाओं को ग्रहण करता है वह बंध कहलाता है। ये दोनों बातें इसमें आ गईं, कषायवान जीव है, कषाय सहित होने से उसके भाव कर्म कोई ना कोई हैं, जो कषायें हैं वे भाव कर्म हैं, और उन भाव कर्म के माध्यम से जो कर्म की सूक्ष्म वर्गनाएं हैं वो आकर के आत्मा के साथ एक मेक हो जाती हैं, इसका नाम यहां पर बंध कहा गया। जैसे कि लोहे का गोला है और गर्म है, अगर उसको पानी में डाला जाए तो चारों तरफ से पानी को शक कर लेता है, खींच लेता है, इसी तरह की दीवाल है जिस पर चिकनाहट लगी है, धूल का झोंका आता है तो सब धूल के कण उस पर चिपक जाते हैं, इसी तरह आत्मा में जो राग द्वेष की चिकनाहट है या राग द्वेष की जो गर्माहट है उसकी वजह से धूल आकर के और चिपक जाती, सब तरफ से पुद्गल वर्गनाओं को आत्म प्रदेश ग्रहण करते हैं और एक मेक हो जाते, जैसे कि दूध और पानी के बीच संबंध है वैसा ही द्रव कर्म के साथ आत्मा का है, और जैसे स्फटिक मणि के सामने जैसे रंग का आवरण रख दिया जाए स्फटिक मणि उसी रंग की हो जाती है, ऐसा जो एक में एक तादात्म संबंध है वो तादात्म भाव कर्म के साथ में है। बंध भी कई प्रकार का है, तादात्म संबंध वाला बंध है वो भाव कर्म के साथ है, संश्लेष संबंध हमारा द्रव कर्मों के साथ में है, इस तरह हमें ये समझना चाहिए। या और उदाहरण ले सकते हैं, चुंबक है, चुंबकीय तत्व उसके भीतर होने से जो प्रभावित होने वाली धातुएं हैं वो सब तरफ से आकर के और उससे चिपक जाती हैं, इसी तरह कर्म जो है कषायवान जीव के आकर के निरंतर चिपकते रहते हैं, कोई भी क्षण ऐसा नहीं है संसारी अवस्था में जिस समय व्यक्ति कर्म के उदय बंध से मुक्त हो सके या सत्ता से मुक्त हो सके, संसार अवस्था में तो ऐसा नहीं है, मुक्त अवस्था में तो जीव इन सब से रहित हो जाता है। प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास तद्विद्या, जो निरंतर होने वाला बंध है वो प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग ऐसे चार प्रकार का ही होता है। प्रकृति के मायने हैं क्वालिटी, किस नेचर का कर्म बांधा है, ज्ञान को ढकने वाला बांधा है तो ज्ञान ढकेगा, दर्शन को ढकने वाला बांधा है तो दर्शन ढकेगा, उसका जैसा स्वभाव होगा वो कहलाता है प्रकृति। प्रदेश कितनी क्वांटिटी में अनंत अनंत पुद्गल वर्गनाएं एक साथ आकर के चिपकती हैं ये प्रदेश कहलाता है, और इसमें भी बंटवारा होता है, मोहनी के लिए सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है, शेष कर्मों के लिए और कम प्रदेश मिलते हैं, ये सब प्रदेश बंध कहलाता है। एक साथ चारों चीजें हो जाती, जैसे अपन को कर्म बनते हैं उनकी प्रकृति निश्चित हो जाती, उनकी क्वांटिटी निश्चित हो जाती और उनका ड्यूरेशन वो कितने समय तक उस कर्म रूप ही बंधे रहेंगे, इसका नाम है स्थिति, द टाइम टू डिके फॉर फ्यूज्ड, जब वो नष्ट होंगे उसके पहले तक उनके रहने का समय वो कहलाता है स्थिति, और फिर पोटेंशियलिटी फल देने की क्षमता, जब वो फल देंगे तो कितनी तीव्रता से या मंदता से फल देंगे, इसका नाम अनुभाग है। जैसे कि गाय का दूध है तो उसमें घी उतना ज्यादा नहीं निकलेगा, भैंस के दूध में और ज्यादा निकलेगा और बकरी के दूध में और कम निकलेगा, उसका रस अलग अलग है, सब में इसी तरह कर्मों का भी रस पड़ जाता है, हम जितनी तीव्रता से कर्म बांधते हैं उतना अनुभाग उतना रस उनमें पड़ जाता है, फिर भी फल देते हैं तो उतनी ही तीव्रता से फल देते हैं, इसका नाम अनुभाग है। ये चारों बातें कर्म बंध के समय एक साथ डिसाइड हो जाती, अब जो है कर्म कितने हैं और कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं। मुख्य रूप से तो कर्म 8 प्रकार के हैं जो निरंतर बनते हैं और उनके और भेदोपभेद 148 आचार्य भगवंतों ने कहे हैं। वैसे तो संख्यात प्रकार के असंख्यात प्रकार के कर्म हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतराया। पहला जो है प्रकृति बंध, जो 4 प्रकार का बंध है तो उसमें प्रकृति बंध अर्थात कितनी प्रकार के कर्म बंधेंगे, तो कहते हैं प्रकृति बंध में 8 प्रकार के कर्म हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ज्ञान पर आवरण लाने वाला कर्म जिसके निमित्त से ज्ञान पर आवरण आता है वो ज्ञानावरण, जिस कर्म के निमित्त से दर्शन गुण ढक जाता है वो दर्शनावरण, जिसके निमित्त से जीव सुख और दुख का वेदन करता है वो वेदनी कर्म, और जिसके निमित्त से जीव अपने आत्म स्वभाव को भूल करके और पर पदार्थों को अपना मानने लगता है ऐसा ये मोहिनी कर्म, और जिस कर्म के निमित्त से जीव किसी एक भाव में एक निश्चित समय के लिए रुकने के लिए बाध्य हो जाता है वो आयु कर्म है, और जिस कर्म के निमित्त से जीव के नाना प्रकार के शरीर की संरचना होती है वो नाम कर्म है, जिसके निमित्त से जीव के कुंभकार के समान छोटे और बड़े कुल की प्राप्ति होती है वो गोत्र कर्म है, और जिसके निमित्त से जीव के दान लाभ भोगोपभोग में बाधा पड़ती है वो अंतराय कर्म है। ऐसे ये 8 ही कर्म हैं। मूल प्रकृतियां तो इनकी 8 हैं और उत्तर प्रकृतियां इनकी 148 हैं। कौन कौन सी हैं? पंच नौ द्वयस्त्राविंशति चतुर्दि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथा क्रमम। जो हमने ज्ञानावरण इत्यादि कर्म कहे उसमें पहले ज्ञानावरण के 5 भेद हैं, दर्शनावरण के 9 हैं, वेदनी के 2 भेद हैं, मोहिनी का परिवार 28 का है और आयु तो 4 प्रकार की ही होती है, 42 या कि 93 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं, गोत्र कर्म 2 ही प्रकार का है, अंतराय 5 प्रकार का है। इस तरह से ये उनकी उत्तर प्रकृतियां 148 हो जाती हैं। अब इनके सबके लिए सूत्र लिखते हैं और सबका स्वरूप हम समझने की थोड़ी शॉर्ट में कोशिश करेंगे। मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवलानाम। मति श्रुत अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। इन 5ों ज्ञानों पर आवरण करने वाले 5 अलग अलग ज्ञानावरण कर्म हैं। मति ज्ञान पर जितना आवरण पड़ जाता है उसका उतना ही कम हमारे लिए प्रकटीकरण होता है, आवरण जितना जितना हटता है उतना ज्ञान हमें होता चला जाता है। इन 5ों ज्ञानों को आवृत करने वाले ये 5 मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, 4 आवरण के साथ तो ऐसा है कि थोड़े बहुत ये हट जाते हैं तो उतना ज्ञान प्रकट हो जाता, लेकिन केवल ज्ञानावरण ऐसा है कि वो हटता है तो पूरा ही हटता है, थोड़ा मोड़ा नहीं हटता है। केवल ज्ञान की किरण विरण नहीं प्रकट होती भैया कि अपन जा समझेंगे थोड़ो केवल ज्ञान प्रकट हो गो, वो तो एक बार होता है तो फिर एक साथ ही होता है, वो सर्वघाती प्रकृति है, जरा भी उसका क्षयोपशम नहीं हो सकता है, उसका तो क्षय ही होता है। शेष कर्मों का क्षयोपशम जितना जितना होता उतना ज्ञान अपन को प्राप्त हो जाता है। चक्षुरवचक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्थान्यग्रद्यस्य दर्शन चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शन अवधि दर्शन केवल दर्शन निद्रा 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 प्रचला 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 और स्थान्यग्रद्य 3 बड़ी निद्राएं 2 छोटी निद्राएं और 4 प्रकार का ये चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, ऐसे 9 जो है वो दर्शनावरणी कर्म के भेद हैं। इन सब पर आवरण 8 चक्षु दर्शन, चक्षु के द्वारा होने वाला जो दर्शन है उस पर आवरण करने वाला एक कर्म अलग है, और अन्य इंद्रियों के द्वारा होने वाले दर्शन पर आवरण करने वाला कर्म अलग है, हमारे अवधि ज्ञान से होने के पहले होने वाले अवधि दर्शन पर आवरण करने वाला अवधि दर्शन नाम है का कर्म है, और केवल ज्ञान से पहले होने वाला जो सामान्य अवलोकन है जो केवल दर्शन है उस पर आवरण करने वाला अलग कर्म है। निद्रा श्रम और खेद को दूर करने के लिए जो स्वान के समान अल्प निद्रा ली जाती है वो निद्रा कहलाती है, और निरंतर निद्रा से जाग करके और गहरी निद्रा में फिर से सो जाना ये कहलाती निद्रा। निद्रा बैठे बैठे ही शरीर का चलायमान हो जाना, झोंका आ जाना ये कहलाती प्रचला, और बैठे बैठे जाग करके बार बार पुनः पुनः सो जाना, आंखों में ऐसे जैसे कि किरकिरी भर गई हो, ऐसा जब निद्रा का उदय आता तो वो प्रचला प्रचला कहलाता है। और सामनेबुलिज्म कहलाती है साइकोलॉजी की भाषा में स्थान वृद्धि, नींद में चलने की आदत, या कि निद्रा लेते समय ही बीच में उठ करके, नींद में ही उठ करके कोई बहुत शक्तिशाली काम करके पुनः आ करके और सो जाता है, भूल जाता है कि मैंने क्या किया। ये जो है अत्यंत शक्ति उत्पन्न हो जाती है ऐसी निद्रा में, उठ करके बड़े बड़े कार्य करके पुनः सो जाता है, ये तीव्र निद्रा का उदय है स्थान निग्रद्धि। सबसे अच्छी तो प्रचला या निद्रा मानी जाती है अल्प निद्रा ले लेना श्रम और खेद को दूर करने के लिए, और नींद पर नींद बार बार सो जाना। निद्रा निद्रा के उदय में तो लिखा हुआ है प्रचला प्रचला या निद्रा निद्रा में कि उसको जो है रास्ते चलते नींद आ जाए, और पेड़ की फुनगी में बिठाल दिया जाए तो वहां पर सो जाए, इतनी प्रकार जो है। तो कई बार अपने लिए भी ऐसा कर्म का उदय आ जाता है, निद्रा का तीव्र उदय आता। कई लोग कहते हैं कि हमारे तो बहुत निद्रा का उदय है, सुबह है तो दोपहर है तो शाम है तो रात है, तो जब चाहे तब लेट गए सो सो। तो ये जो है निद्रा दर्शनावरणी कर्म को दर्शनावरणी कर्म माना गया है, और दिन में सोने से तो और अधिक दर्शनावरणी कर्म बनता है, ये भी आचार्य भगवंतों ने लिखा। और कहते दर्शनावरणी कर्म की उदीर्णा काय से होती, कहते संजा खो और भैंस को मठा खाओ तो दर्शनावरणी कर्म। हाँ, भैंस का दही जो खाता हो वो भी शाम को खाता है तो कहते बहुत दर्शनावरणी कर्म की उदीर्णा होती उससे। ऐसे कई हेतु दिए, बचने को उपाय भी दिए, कर्मबंदी की प्रक्रिया भी बताई। सद सद वेद देहे वेदनी, कर्म दो प्रकार का है, साता वेदनी और असाता वेदनी। जिसके निमित्त से जीव जो है सुख का वेदन करे सो साता वेदनी, और जिस कर्म के उदय से जीव जो है दुख का वेदन करता है सो असाता वेदनी है। वैसी सामग्री भी उसी के अनुरूप मिल जाती है। अब सामग्री भले ही कितना अच्छी मिले लेकिन असाता को उदय होवे तो वही सामग्री असाता के लिए कारण हो जाती। अब चले जा रहे थे वंदना कर भी शिखर जी की, ठंड बहुत अति सो अच्छे खूब बूलन उलन पहन के गए। अब बस सब सामग्री जो है साता साता दे रही थी हैं, और फिर 3 बजे होते से लौटन लगे, बहुत धूप हो गई, सब बयासी लग रही कि कहां फेंक देते। अब भाई जो है असाता का कारण हो गई। तो सामग्री साता असाता दोनों, जैसा उदय होता जीव का वैसा सामग्री साता असाता के लिए कारण बन जाती है। इसलिए मुख्य रूप से जो परिभाषा करी वो यही करी कि जिस कर्म के निमित्त से जीव के अंतरंग में साता का वेदन होवे सो साता वेदनी, और जिसके उदय से असाता का वेदन होवे सो असाता वेदनी है। और दर्शन चारित्र मोहिनी कषाय कषाय वेदिनी आख्या स्त्री द्विनौ षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्यात् तदुभयान् कषाय कषायौ आश्रतरति शोक भय जुगुप्साय स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुवंद्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा। जे 28 प्रकृतियां दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की मिला करके पूरी हैं। कहते मोहिनी के तो प्रमुख दो भेद हैं, दर्शन चारित्र, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। और दर्शन मोहिनी के कितने हैं तो कहते मिथ्यात्व सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्। और चारित्र मोहिनी के कितने हैं तो कहते कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी। तो कषाय वेदनी कितने प्रकार की है तो कषाय वेदनी तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन और इनके क्रोध मान माया लोभ से ऐसे 16 भेदों वाली है। और अकषाय वेदनी को ही 9 कषाय कहते हैं। सुहास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद ऐसी 9 कषाय इसी को अकषाय वेदनी कहते। और 16 कषाय सो 25 तो ये हो गई। और मिथ्यात् सम्यक् तो सम्यक् मिथ्यात् ऐसा पूरा मोहिनी का 28 का परिवार है। जिस कर्म के उदय से जीव के सच्ची श्रद्धा न होवे उसको मिथ्यात् कहते, और जिस कर्म के उदय में जीव के सच्ची श्रद्धा होवे सो सम्यक् प्रकृति कहलाती। जिसमें श्रद्धा और अश्रद्धा मिली होवे ऐसे कर्म के उदय में उसको सम्यक् मिथ्यात् प्रकृति कहते। जी हो गया दर्शन मोहिनी का हिसाब। और जिसके उदय में जीव के ऐसी ऐसा उदय है कषाय का कि जिसके उदय में जीव के कोई भी जरा भी चारित्र ने हो पावे तो समझना अनंतानुबंधी कषाय है। और जिसके उदय में जीव के देश चारित्र तो हो जावे लेकिन सकल चारित्र ने हो सके तो उसको मैं गड़बड़ कर गया क्या है? हाँ अप्रत्यक्ष है, जिसके उदय में जिसके उदय में जीव के देश चारित्र न हो सके उसको प्रत्याख्यानावरण कषाय कहते, और जिसके उदय में जीव के सकल चारित्र न हो सके उसको प्रत्याख्यानावरण कहते, और जिसके उदय में जीव के यथाख्यात चारित्र न हो सके उसको संजुलन कषाय कहते, और अनंत मिथ्यात्व को बांधने वाली कषाय का नाम अनंतानुबंधी है। छह महीने से ज्यादा जो चले कषाय सो अनंतानुबंधी, और छह महीना के भीतर भीतर समाप्त हो जाए अप्रत्याख्यान, 15 दिन के भीतर भीतर समाप्त हो जाए प्रत्याख्यान, 48 मिनट में समाप्त हो जावे वो कहलाती है संजुलन कषाय। ऐसी ये कषाय हैं। नौ कषाय का स्वरूप भी अगर आप चाहें तो जान सकते हैं। रति तो कहलाती है देश काल इत्यादि में प्रीति होना, और देश काल इत्यादि से प्रीति नहीं होना अरति है। भय तो सामान्य रूप से अपन समझते ही हैं, जुगुप्सा अर्थ घृणा का अर्थ जुगुप्सा है, और हास्य कर्म के उदय में हंसी इत्यादि आती है, और हास्य रति अरति शोक, शोक भी समझते हैं उस कर्म के उदय से व्यक्ति उदास और दुखी हो जाता है वो शोक कर्म। ये नौ कर्म है किसी ना किसी कषाय के साथ ही आते हैं, ऐसे नहीं आते। और स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, ये तीन वेद हैं, ऐसी ये नौ कषाय हैं। इस प्रकार से चारित्र मोहिनी का इतना बड़ा परिवार है 25 का। नारक तैरक यो नमानुष दैवानी, नरक आयु तिरंच आयु मनुष्यायु और देवायु, ये चार प्रकार की आयु है। आयु कर्म इतना ही करता है कि जीव को उस जगह रोके रखता है, और गति कर्म क्या करता है कि उस रूप होने की फीलिंग देता है, मैं मनुष्य हूं, ये मनुष्य गति की वजह से फीलिंग होती है, और 60 साल तक मनुष्य रहना पड़ेगा, ये आयु कर्म का काम, मनुष्य आयु का काम। इतना दोनों में फर्क करके चलना, आयु तो जो है उस भाव में पहुंच करके और वहां रोके रखती है, जैसे कि खूंटा से गाय को बांध दिया तो बंदी है वहीं पर, जितनी देर तक रस्सी बंदी उतनी देर तक बंदी रहेगी। इसी तरह गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघा संस्थान सहन निस्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघाता परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगतया प्रत्येक शरीर त्रस सुभ सुस्वरसो सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरा देयशः कीर्ति सेत्राणि तीर्थकरत्वं च। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां ये बहुत बड़ी हैं, सूत्र तो एक ही है लेकिन बहुत लंबा हिसाब है इसका। गति चार होती भैया, मनुष्य गति देव गति नरक गति और तिरंच गति, इसमें से नरक गति अशुभ है बाकी गतियां शुभ है। जाति 5 प्रकार की होती, 1 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री जीव होते, शरीर 5 होते, पहले पढ़ चुके अपन औदारिक विक्रिय कहार तेजस कारमनानी शरीरानी, वो 5 प्रकार के शरीर हैं, और अंगोपांग वो औदारिक विक्रियक और आहारक, इन तीन के अंगोपांग बनते हैं, तरह का शेप बनेगा वो कहलाता संस्थान। उसमें किसी किसी का शरीर सुडोल होता है उसको बोलते समचतुरस संस्थान, किसी किसी का शरीर बट वृक्ष के समान आयत और गोल होता है वो नेग्रोथ परिमंडल संस्थान कहलाता, किसी किसी का शरीर बामी के समान नाभि के नीचे तो बड़ा होता है नाभि के ऊपर छोटा शरीर मिलता है उसको स्वाति संस्थान कहते हैं, किसी किसी का शरीर कुबड़ा होता है उसी को कुब्जक संस्थान कहते हैं, किसी का बौना शरीर होता उसे बामन संस्थान कहते हैं, और किसी का टेढ़ा मेढ़ा शरीर होता है कोई भी अवयव प्रपोर्शनेट नहीं होता है तो उसको हुंडक संस्थान कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जिस प्रकार का संस्थान हो वही नाम कर्म मान लेना चाहिए। और सहनन का मतलब होता है ज्वाइंट्स की शक्ति, हड्डियों की और हड्डियों की संधियों की शक्ति का नाम सहनन कहलाता। जिस कर्म के उदय से शरीर में हड्डी और संधियों की उत्पत्ति होती है वो सहनन नाम कर्म कहलाता है। अगर किसी का बहुत मजबूत सहनन है तो उसको बोलेंगे वज्र वृषभ नाराज सहनन। वज्र का मतलब तो होता बहुत मजबूत कठोर, और वृषभ मतलब होता वेस्टर्न ऊपर जैसे शॉकअप लगा देते हैं दो चीजों को जोड़ने के लिए, और नाराज मतलब होता उसमें एक ठोक कील लगी हुई है। तो वृषभ भी है और नाराज भी है, वेस्टर्न भी है कील भी लगी है और हड्डियां वज्र की हैं, सब कुछ वज्र का है, ये वज्र वृषभ नाराज सहनन कहलाएगा। और वज्र नाराज क्या कहलाता है, जिसमें कि कीलियां कीले और हड्डियां ये तो वज्र की हैं, लेकिन ऊपर जो है वेस्टर्न नहीं है, वो वज्र का नहीं है। और नाराज सहनन वो कहलाता है जिसमें कि शरीर की हड्डियां कीलों के द्वारा कीलित तो हैं पर न वेस्टर्न है न वो वज्र की हैं, ये नाराज सहनन कहलाता। अर्ध नाराज वो कहलाता है जिसमें कि कीलें आदि आदि फंसी, दो हड्डियां हैं उनके बीच आधी कील फंसी हुई है, पूरे में नहीं है, तो वो कहलाएगा अर्ध नाराज सहनन। वीक ज्वाइंट्स कहलाते हैं ये। और अब आजकल जो मिलती हैं वो कीलित सहनन मिलता है, दो हड्डियां इस तरह से आपस में फ्यूज्ड हैं, जरा भी ऐसा हो गया तो डिसलोकेट हो जाएंगी, उनके बीच कोई कील नहीं है, ये कहलाता है कीलित सहनन। और असंप्राप्त सर्पाटी का सहनन, दो हड्डियां ऐसे जुड़ी तो हैं और उनके ऊपर सिराएं लिपटी हुई हैं, जरा झटका लगा तो हट गई, ये इस तरह से असंप्राप्त सर्पाटी का सहनन, बहुत कमजोर क्वाइट वीक ज्वाइंट्स जिसको कहें, ये छह सहनन होते हैं। स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये भी आठ प्रकार का स्पर्श अपन जाते हैं, ठंडा ठंडा गर्म हल्का भारी कड़ा नरम और रूखा चिकना, जो इस तरह से आठ स्पर्श होते हैं। और पांच प्रकार के रस होते हैं, खट्टा मीठा कड़वा कड़वा और कसायला है चिरपरा, ये पांच प्रकार के रस होते हैं, दो गंध होती सुगंध होगी या दुर्गंध होगी। और पांच प्रकार के वर्ण होते हैं, काला पीला नीला हरा है यही नहीं नीला लाल सफेद, ये पांच प्रकार के वर्ण होते, ये 20 भेद हो जाते हैं इसके जो है। अब ये अलग अलग नाम कर्म हैं, देखो अपने जैसे नाम कर्म का उदय होगा वैसा शरीर का रंग हो जाएगा, वैसी शरीर की गंध हो जाएगी, वैसा शरीर का स्पर्श हो जाएगा। जिस सब शरीर के स्पर्श रस गंध इत्यादि ये नाम कर्म के उदय से मिलते हैं। इनको पढ़ करके अपन को क्या सोचना भैया, कि जे सब हमने कर्म जैसे बांधे थे वैसा हमें आज मिला, अब उपाय आगे के लिए क्या करना और इनका सदुपयोग कैसे करना, इतना ही विचार करना अपने लिए, और ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं। अनुपूर्वी कर्म वो कहलाता है जिस कर्म के उदय से विग्रह गति में जीव अपने पूर्व शरीर के आकार को बनाए रखता है और आगामी शरीर की रचना के लिए आगे बढ़ जाता है। दोनों काम करता अनुपूर्वी नाम कर्म, जब उसका उदय आता है विग्रह गति में तो जो पूर्व का आकार था वो आकार बना रहता और ट्रांसमाइग्रेट कर रहा है उस तरफ, उस जगह उसको ले जाने में क्षेत्र विपाकी कर्म है, उस क्षेत्र में उसका उदय आता है। तो ये अनुपूर्वी, अनुपूर्वी भी कितनी होती, तो अनुपूर्वी चार होती हैं, जितनी गतियां हैं जितनी आयु है उतनी अनुपूर्वी है। और अगुरु लघु, ये भी एक नाम कर्म है, जिस कर्म के उदय से शरीर ने तो इतना हल्का होता है कि आकाश में उड़ जाए और ने इतना भारी होता कि उठे ही बैठने पाए, ऐसा ये अगुरु लघु नाम कर्म अपने लिए है उदय में। और उपघात नाम कर्म, जिस नाम कर्म के उदय से शरीर के अपने ही अवयव अपना ही घात करने में निमित्त बन जाते हैं, चलते चलते ओको पांव से और नाखून टकरा जाए तो अपना पांव ही कट जाए। और बारह सिंगा वगैरह हैं सो इनके सींग दिखने में बहुत सुंदर हैं, मनो झाड़ी में उलझ जावे तो सुलझते नहीं और वहीं उनके प्राण निकल जाते हैं। जो सर्प है उसकी दाढ़ है उसमें नहीं, वो उपघात नहीं कहलाएगा, वो परघात कहलाएगा। तो स्वयं अपने अवयव ऐसे बनना जिससे कि अपना ही घात हो जाए, ये उपघात नाम कर्म के उदय से होता। और परघात, जिस कर्म के उदय से शरीर में दूसरे के घात करने वाले अवयव उत्पन्न हो जाती, जैसे सांप के दांत में विष की थैली पीछे लगी रहती, वो दूसरे के घात में कारण बनती है। और आतप नाम कर्म क्या है, तो कहती जिस कर्म के निमित्त से मूल में तो ठंडा रहे और किरणें जो निकलें वे गर्म निकलें, तो ये आतप नाम कर्म, जैसे जैसे कि सूर्य है। और उद्योत नाम कर्म क्या है, जिस कर्म के निमित्त से शरीर जो मूल में है वो भी ठंडा है और जिसकी जो आभा निकल रही वो भी ठंडी है, ये उद्योत नाम कर्म कहलाता। जुगनू में होता है, कुछ स्टार फिशेज होती हैं समुद्र में जो कि उनकी लाइट बहुत सुंदर लगती हैं, और चंद्रमा तो है ही, तो ये उद्योत नाम कर्म है। उच्छ्वास नाम कर्म क्या है, जिस कर्म के निमित्त से जीव के श्वास और उच्छ्वास होता है, इनहेल और एक्सहेल करते रहते हैं अपन सांस को, वो सब उच्छ्वास नाम कर्म, ये भी अपने लिए मिला है। अब जीव पढ़ रहे हैं अपन को तो ऐसा लगता है, वैसे तो सामान्य रूप से जीवन चल रहा है, कभी ध्यान ही नहीं जाता कि जे भी ऐसे कर्म करे हुई है कि सांस ठीक से चल रही है, सांस चलती रहती तो पता नहीं लगता, जब उखड़ने लगती जब मालूम पड़ता कि भैया पाप को दया दो। विहायो गति, आकाश में गमन का नाम विहाय। विहायस मतलब होता आकाश में। अपन लोग आकाश में चलते हैं अगर देखा जाए तो, देखो पैर उठा के कहां रखते, आकाश में ही तो रखते हैं। फिर वो टिक जाता है तो दूसरा उठा के रख लेते, फिर वो भी आकाश में, दूसरा भी आकाश में। सिर्फ जमीन का तो आश्रय लेते हैं, चलते तो अपन आकाश में हैं। तो उसी को व्याहय गति कहती। दो प्रकार की होती, एक भली होती, हाथी इत्यादि की जो चाल है वो भली मालूम पड़ती, ऊंट की चाल जो है वो ठीक नहीं मालूम पड़ती। इस प्रकार से प्रशस्त व्याहय गति और अप्रशस्त व्याहय गति है। ग्रेसफुल मैनर ऑफ मोशन उसको बोलेंगे, प्रशस्त व्याहय गति, चलने का जो ढंग है, चाल है वो सुंदर है तो प्रशस्त है, नहीं तो अप्रशस्त है। एक होता है प्रत्येक शरीर नाम कर्म, जिस कर्म के निमित्त से प्रत्येक जीव को अलग अलग अपना शरीर मिलता है, सो वो प्रत्येक शरीर अपन का प्रत्येक शरीर है। और साधारण शरीर कैसा होता, कॉमन बॉडी, जिस कर्म के निमित्त से अनंत जीवों को रहने के लिए एक ही शरीर मिलता है। जैसे कि एक कमरा मिले हो, 100 आदमी रहे वाले हो तो कैसी स्थिति बने, ऐसे ही कहते कि एक शरीर मिला और अनंत जीव जिस कर्म के निमित्त से मिलता वो साधारण है। उस साधारण वनस्पति से अपन हिंसा से बचते हैं, क्योंकि एक शरीर के मरने से अनंत जीव मर जाते हैं, इसलिए साधारण वनस्पति जो जमीकंद इत्यादि हैं उनका क्यों त्याग करते कि भैया उनके बिना काम चल जावे तो चलाओ, बहुत जीव राशि का घात होता। और त्रस नाम कर्म किसे कहते, जिस कर्म के निमित्त से जीव को त्रसपने की प्राप्ति होती है वो कहलाता है त्रस नाम कर्म। दो इंद्री, तीन इंद्री इत्यादि ये सब त्रस जीव कहलाते। स्थावर वो है जिसके उदय से स्थावर भाव को प्राप्त हो गए, एक इंद्री पने को प्राप्त होता है, वो स्थावर नाम कर्म है। और सुभग कौन सा है, कहते ऐसे कर्म का उदय जिसके निमित्त से जीव सौभाग्यशाली होवे, सबको सामान रूप से प्रिय मालूम पड़े, वो सुभग नाम कर्म है। कई कई जीव सबको अच्छे मालूम पड़ते हैं, ये सुभग नाम कर्म है। और दुर्भग है जिस कर्म के उदय से बड़ा दौर्भाग्यपूर्ण जीवन होता है, यह सभी के लिए जीव अप्रिय लगता है, वो दुर्भग नाम कर्म है। सुस्वर नाम कर्म क्या है, जिस कर्म के निमित्त से जीव के मधुर स्वर की प्राप्ति हो वे सो सुस्वर है, और मधुर स्वर की प्राप्ति न हो वे तो दुस्वर है। कौवे की आवाज दुस्वर मालूम पड़ती, कोयल की सुस्वर मालूम पड़ती है। और शुभ नाम कर्म क्या है, कहते जिस कर्म के निमित्त से शरीर के सब अवयव सुंदर होवे। अब देखो किसी के शुभ नाम कर्म का तो उदय है सो शरीर के अवयव तो बहुत सुंदर है, मनो दुर्भग नाम कर्म को उदय है सो कोई को अच्छे नहीं लगा। और किसी के अशुभ नाम कर्म का उदय है, शरीर के अवयव सुंदर नहीं है, लेकिन सुभग नाम कर्म का उदय है सो सुंदर अवयव नहीं होने पर भी जीव को प्रिय मालूम पड़ता है। ये सब कर्मों का खेल है। शरीर जो है इस तरह सुंदर और असुंदर हमारे पूर्व में बने हुए कर्मों के माध्यम से होता है। शुभ और अशुभ नाम कर्म हो गया। सूक्ष्म नाम कर्म वो कहलाता है जिस कर्म के निमित्त से जीव जो है ऐसे शरीर को प्राप्त करता है जिसको कि कोई ना घात कर सकता है ना जिसके द्वारा किसी का घात हो जाता हो, तो वो सूक्ष्म शरीर कहलाता, अपन के देखने में नहीं आता वो। और स्थूल शरीर अपना है, जिस कर्म के निमित्त से बादर या स्थूल शरीर मिलता है जिससे दूसरे का भी बाधा पहुंचती और दूसरे को भी जो बाधा पहुंचा सकता है वो स्थूल शरीर है। पर्याप्ति किसे कहते हैं, कंप्लीटेशन को पर्याप्ति कहते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल अपने पास रखा है और अपन ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी तो पूरी बन गई तो पूरा हो जाना पर्याप्त कहलाता। इसी तरह यह है कि जिस कर्म के निमित्त से जीव अपने योग जितनी भी पर्याप्तियां हैं उनको पूर्ण कर लेता है उसे पर्याप्ति, अर्थात अपने शरीर के बनाने के लिए जो कार्य करना था उस सब के पूरा करने की जो शक्ति प्राप्त है वो पर्याप्ति नाम कर्म कहलाता है। आहार, आहार पर्याप्ति है, शरीर है, इंद्री है, श्वासोच्छ्वास है, भाषा है और मन है, इन सब के पूर्ण होने की क्षमता का नाम ही पर्याप्ति है। और अपर्याप्त क्या कहलाता, जिस कर्म के उदय से जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता, शुरू तो कर लेता है जिसको अपन कहते लब्धि पर्याप्त निगोदिया जीव है, तो अब एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना है, पर्याप्तियां शुरू करी और मरण को प्राप्त हो गया, पूरी नहीं हो पाई, यह पर्याप्त नाम कर्म का उदय उसके चलता है। स्थिर नाम कर्म क्या है, कहते जिस कर्म के उदय से जीव के जो सात धातुएं हैं रस रुधिर इत्यादि वे सब स्थिर बनी रहती हैं, या कि जिसे उपवास इत्यादि करने पर भी शरीर में कोई
शरीर में स्थिरता बनी रहती है, व्याधि इत्यादि नहीं होती, वो स्थिर नाम कर्म है। और जिसके बात पित्त और कफ का संतुलन जरा सी ठंडी हवा जरा सी गर्मी हुई और बिगड़ जाता है तो अस्थिर नाम कर्म है। इस तरह अपन देखते हैं, ये तो बहुत आसानी से देखते हैं। और आदेय जिस कर्म के निमित्त से जीव एक विशिष्ट प्रकार की आभा प्राप्त करता है वो आदेय नाम कर्म है। और जिस कर्म के उदय से जीव के कांति नहीं होती है, कांतिहीन शरीर प्राप्त होता है तो वो अनादेय कर्म है। और जिस कर्म के निमित्त से जीव के विद्यमान अविद्यमान गुणों की प्रशंसा मिलती सब जगह जहां चले जाते वहां पर, तो कहते ये यश कीर्ति नाम कर्म है। और जिसके उदय से अवगुणों का ही प्रकाशन होने लगता है जीव के, तो वो अयश कीर्ति नाम कर्म है। ये नाम कर्म सब हो गए, एक बचा तीर्थंकर। कहते जगत तीनों लोकों में पूज्यता जिस नाम कर्म के निमित्त से होती है वो तीर्थंकर नाम कर्म है। या जिसके निमित्त से पंच कल्याणक आदि महान महोत्सव को प्राप्त करके जीव धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करता है उसे तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। उच्चैरनी चैश्च। गोत्र कर्म दो प्रकार का है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। लोक में पूज्य श्रेष्ठ धर्म परंपरा के आचरण से युक्त कुल की प्राप्ति होना उच्च गोत्र है। और धर्म आचरण से हीन और लोक में निंदनीय ऐसे कुल की प्राप्ति होना नीच गोत्र के उदय से ही होता है। इसके बारे में विशेष तो कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहना है मुझे कि यहां पर जन्म की भी मुक्तता है और कर्म की भी मुक्तता है। जन्म से भी उच्च नीच गोत्र होता है और बाद में व्यक्ति जो है कर्म से भी उच्च और नीच गोत्र को प्राप्त करता है। इसलिए दोनों चीजें हमें मान्य होना चाहिए, अकेले जन्म से ही नहीं और अकेले कर्म से भी नहीं, दोनों मान्य हैं। इसमें बहुत इस पे भारी चर्चा चलती है, अपन को इतना ही समझना चाहिए। क्योंकि कई घर ऐसे होते जिनमें परंपरा से रत्नत्रय चला आता है, धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो ऐसे कुल खोच कुल तो माननी पड़े। भले ही वो में निकृष जीव पैदा हो जावे लेकिन है तो भैया उसको मिला तो है, उच्च कुल मिला हुआ है। फिर वो अपना आचरण खराब करे व्यसनी हो जावे तो ये बात जुदी है, लेकिन परंपरा से जिसको धर्म मिला है वो उच्च गोत्र का तो खेलाएगा, उसके सुधरने के चांसेस ज्यादा है। दान लाभ भोगो भोग वीर्या नाम कहते, दान लाभ भोग और उपभोग और वीर्य इन सब के लिए विघ्न डालने वाला अंतराय कर्म है। दान देने जिस कर्म के उदय में दान देने के भाव होने पर भी दान दे नहीं पाता, दाना अंतराय कर्म। दान देने का भाव है लेकिन वो दान दे नहीं पाता। जिस कर्म के निमित्त से जीव इच्छा होते हुए भी कि मुझे लाओ, लाभ प्राप्त नहीं होता। जिस नाम कर्म के उदय से भोगने की इच्छा होती हुई भी भोग रूप परिणाम नहीं हो पाते हैं और उपभोग की सामग्री भी प्राप्त नहीं हो पाती। उपभोग की इच्छा तो होती है उसको उपभोगांतराय कहते। और जिस कर्म के निमित्त से जीव उत्साहित होने की इच्छा तो रखता है लेकिन उत्साहित नहीं होता। कई लोग कहते कि महाराज बहुत इच्छा होती कि धर्म करें लेकिन मन ही नहीं लगता। मंदिर आने की घर से तो इच्छा होगी, मंदिर आ जावेंगे तो मन ही नहीं लगता, चलो वापस घर चले। ये क्या चीज है? यही है वीर्यांतराय। धर्म करने में तो उत्साह नहीं है, पाप करने में बहुत उत्साह है। ये विघ्न करणम अंतरायस्य। इसलिए इससे भी सावधान रहना चाहिए। आदितस्तिष्ठिना मंत्रायस्य चात्रिंशत् सागरूपम् कोटिकोट्यः पराय स्थिति। अब उत्कृष्ट स्थिति किस कर्म की कितनी है? सो पहले की जो तीन प्रकृतियां कहीं, आदितस्तिष्ठिना ज्ञानावरण दर्शनावरण और वेदनी और अंतराय, ये आखिरी वाली को कह दिया यहां पर, इसलिए अंतराय अलग से लिखना पड़ा। इन सब की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? ये कर्म अगर बंधे तो कितने समय तक फल दे सकते हैं? तो कहते 30 कोड़ा कोड़ी सागर। भारी है इनका ड्यूरेशन, 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। और ये तो कमाई है सब ततिर मोहनीयस्य। और मोहनी कर्म बंध जावे मिथ्यात्व तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। सो ऐसा नहीं समझना कि इतनी बांध ली सो इतनी भोगने पड़े, अंतर मुहूर्त में चुटकी बजाते हुए और इन सबको काटा जा सकता है, ये ध्यान रखना। इससे दीनहीन होने की आवश्यकता नहीं है, कर्मों को समझ करके और अपनी मुट्ठी में है ऐसा मान करके चलना। जैसे आम को पेड़ लगाओ है, सो में आम फल है, सो आम तो खाने पड़े हैं, मनो आम कैसे खाने, कच्चे टूर के खाने तो कच्चे टूर के खा लो, और खट मिट्ठी करके खाने तो शक्कर डार के खा लो, और चटनी बनाने तो चटनी बना लो। सो हमने ऐसे कर्म बांधे हैं, हम जब चाहें सो कच्चे तोड़ के खाओ, चाहें तो हम उदीर्ण करवा के कच्चे तोड़ के खा सकत, और समय से पहले पका करके खा सकत, और हम चाहें तो कर्मों की चटनी बना सकत। काय हम इन्हें बांधे भी हमारे ऊपर, क्रिएशन इज नॉट मोर देन क्रिएटर। कभी भी कृति कृति बड़ी नहीं होती कलाकार से, हमने बांधे हैं इसलिए हम बड़े हैं, हम उन कर्मों को काट भी सकते हैं। कर्म तो हमारे हाथ का मैल है, लेकिन हम इन कर्मों का स्वरूप सुनकर के विस्मृत हो रहे करी, और हम ही ने बांधे, हम इनको अंतर मुहूर्त के अंदर सच्चे देवगुरु शास की श्रद्धा तत्वार श्रद्धान के द्वारा अंतर मुहूर्त में जीव 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति वाले मिथ्यात्व कर्म का भी अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति बना करके और नाश कर देता है, कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इतना पुरुषार्थ भी जीव का है। कोई कोई समय ने आत्मा ने कर्म दावे से, पर कोई कोई समय ने तो कर्म ने आत्मा दावेश। एक समय ऐसा आता है जब कर्म का तीव्र उदय आता है तो जीव नहीं जाना चाहे तो नरक में जाना पड़ता है, और एक समय ऐसा आता है कि जीव अपने अनंत बांधे गए समस्त कर्मों को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसलिए डरने की बात नहीं भैया, इनकी स्थिति इतनी ज्यादा है, डरना इसलिए कि ऐसा ना हो जाए कि इतनी स्थिति बन जाए, और बंध गई है तो फिर डरना नहीं, अब हम काटने का उपाय भी जाग जाए। ये दोनों चीजें समझने की। विंशतिर नाम गोत्र यो हो, गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। और त्रयस्त्रिंशत् सागरोप मान्य आयुषः, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, तो 33 सागर है, नरक आयु की है और सर्वार्थ सिद्धि की है, 33 सागर सबसे उत्कृष्ट। अपराध आदर्श मुहूर्ता वेदनीयस्य, वेदनी कर्म की अधिकतम स्थिति कितनी है, तो कहते 12 मुहूर्त। अपराध द्वादश मुहूर्त जघन, हाँ उत्कृष्ट नहीं, उत्कृष्ट तो पहले बता दी थी, वही उत्कृष्ट नहीं, जघन स्थिति कितनी है, तो द्वादश मुहूर्ता 12 मुहूर्त है, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, कुल इतनी है। जी किसको मनती मनो जघन, जी 10वें गुण स्थान में मुनि महाराज को बनती, और नीचे नीचे नहीं बनती, जघन स्थिति वेदनी कर्म की। अब सवेरे सवेरे करो है वेदनी बांधो, संजय तक उदय में आ जाएगा साता वेदनी, इतनी स्थिति बनती। नाम गोत्र यो रष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की जघन स्थिति कितनी है, तो कहती 8 मुहूर्त है, जी सब ऊंचे गुण स्थान में बनती है। शेषा नाम अंतर मुहूर्ता, शेष सभी जो 5 कर्म बचे उनकी जघन स्थिति कितनी, अंतर मुहूर्त, इतनी भी जघन भी बांध सकते हैं अंतर मुहूर्त। ये हो गया सब कर्मों की सामान्य रूप से स्थिति बता दी, इतने समय तक ये कर्म आत्मा के साथ बंधे रह सकते हैं। और एक सागर के पीछे 1000 वर्ष की आवाज़ कितनी आवाज़ है ना, एक सागरोपम के पीछे, और 1000 वर्ष की तो 70 कोड़ा कोड़ी के लिए 7000 वर्ष की आवाधा पड़ती है। उतनी आवाधा के बाद फिर कर्म अपने उदय में आता है और उतने समय तक उदय में आ सकता है, ये मैक्सिमम। हाँ 70 कोड़ा कोड़ी का बांधा हुआ, 7000 वर्ष की आवाधा पड़ेगी उसकी, तब फिर वो उदय में आएगा और उदय में आकर के अपना उतने समय तक फल दे करके और निर्जरित हो जाता है। ये तो सामान्य प्रक्रिया, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, उदीर्णा चलती रहती है और कर्म समय से पहले भी उदय में आकर के और नष्ट होता रहता है। निधत्ति निकाचित कर्म वो खेलाते जिसके की जिसमें हम कुछ नहीं कर पाते, उत्कर्षण अपकर्षण वगैरह कुछ नहीं कर पाते, लेकिन निधत्ति निकाचित कर्म से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जिन बिंब दंशनीन निधत्ति निकाचित कम पैदी खै जादो, जिन निधत्ति निकाचित कर्मों को जीव बांधने के बाद भोगने के लिए मजबूर हो जाता है, उन्हीं कर्मों को जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन करने, साक्षात भी नहीं, जिन बिंब दंशने न, जिनेन्द्र भगवान के बिंब के दर्शन करने मात्र से निधत्ति निकाचित कर्मों का क्षय होता देखा जाता। ये धवला में लिखा, इसलिए पुराने जमाने के लोग कितना हित चाहते थे ये भैया चाहे जैसो बने दर्शन करके, चंदन लगा के यू हम पता करें कि तुमने दर्शन करेगा, का पता दर्शन करते करते तुम्हारे कौन से निहत्ति निकाचित कर्म नष्ट हो जाए फोकट में, कछु बिना पुरुषार्थ की अकेले दर्शन कर भी गए। इसलिए ये जो परंपरा अपने यहां दर्शन की डाली है बहुत महत्वपूर्ण, वे भले ही कछु ने जाना थोए पुराने लोग, लेकिन उनने अच्छी, हमने एक चीज ये बहुत देखी कि अच्छी आदतें डाल दी, उनका तर्क वर्क नहीं जानते थे कि इसे का हो, आज तो एक एक चीज को पूछा कि इसे का हो तो कन्ने अन्य है नहीं कछु, पहले लोग करते थे पूछते नहीं थे कि का हुई है, सुनने कही पिताजी ने कही कि जाने दर्शन को सो दर्शन को जाने, का हुई है अब जो हुई है सो हुई है, आज तो पहले बताओ कि का हुई है, फिर करेंगे बाद में, नहीं भाई हुँ? अब साक्षात दर्शन का क्या फल है, जब अकेले जिन्न बिंब के दर्शन मात्र से निधत्ति निकाचित होते तो भैया साक्षात का तो उसका और ही फल, हम तो ये बताने के लिए कह रहे हैं कि देखो साक्षात नहीं, अकेले जिन्न बिंब के दर्शन करने मात्र से निधत्ति निकाचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। विपाको अनुभवः कहते विविध प्रकार के फल देने की सामर्थ्य का अनुभव का नाम ही अनुभव है। देखो कैसे प्रकृति बधा दी, फिर प्रदेश बता दिए कि अनंतानंद प्रदेश आ, और फिर बाद में अब बताते हैं स्थिति बता दी, अब अनुभव विपाको अनुभवा, जो विविध प्रकार के फल देने की सामर्थ्य है उसी का नाम अनुभव है, या उसी को अनुभाग कहते हैं, फ्रूटेशन जिसको अपन अपनी भाषा में कहें, सा यथा नाम, और वो फल कैसे मिलेगा तो कहते जिस कर्म का जैसा नाम है वैसा फल, ज्ञानावरण है सो ज्ञान का आवरण, दर्शनावरण है सो दर्शन का आवरण, वेदनी है सो सुख दुख का वेदन, मोहनी है सो गाफिल करने का काम, इस तरह जैसा नाम है वैसा उसका सायथा नाम, फल जिस कर्म का जैसा नाम है वैसा होता, जिसकी जैसी प्रकृति है। ततस्य निर्जरा, और फिर फल मिल जाने के बाद कर्म खिर जाता है, जैसे कि फल लगा और पक गया तो खिर गया, पकने का नाम जो है वो अपन क्या कहेंगे उसको, ये उसका अनुभव होना, पकना मतलब अनुभव हो जाना, और पक करके नीचे गिर गया वही निर्जरा कहलाती, ततस्य निर्जरा। अभी प्रदेश की चर्चा नहीं करी थी, अभी पहले प्रकृति हो गई, स्थिति हो गई, अनुभाग हो गया, अब कहते प्रदेश कैसे हुए, कितने कैसे कर्म आकर के कितनी क्वांटिटी में बनते हैं। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्मी क्षेत्रावगा स्थिता सर्वात्म प्रदेशेष्वनंतानंत प्रदेशा, केते नाम प्रत्ययाः, अर्थात जैसे कर्म प्रकृति होगी और सर्वतो सब तरफ से योग विशेषात योग के माध्यम से सूक्ष्म एक क्षेत्र अवगाह स्थिता, जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहीं पर कर्म के प्रदेश भी स्थित हैं, वही प्रदेश उतने दूसरे दूर से नहीं आना है, जो आत्मा के प्रदेशों में उद्गल वर्गनाएं हैं वो वहीं के वहीं, तो एक क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु, और समस्त आत्म प्रदेशों के द्वारा अनंतानंत प्रदेशा, अनंतानंत प्रदेश निरंतर जीव के साथ कर्म रूप से बंधन को प्राप्त होते हैं। तो कहते प्रति समय योग विशेष के द्वारा कर्म प्रकृति में कारणभूत सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाह में स्थित, एक क्षेत्रावगाही और स्थित दो अर्थ अलग अलग ले लें, चलायमान नहीं स्थित, और अनंत अनंत पुद्गल परमाणु सब आत्मा के प्रदेशों से संबंध को प्राप्त होते हैं, इसी का नाम प्रदेश बंध है। सद्वेद शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम, साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम कर्म और शुभ गोत्र कर्म, ये सब पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं। अब इनको गिनना चाहो तो अलग अलग इनको गिन सकते हैं, और अतो न्यत पापम, और इनसे अतिरिक्त जो बची वे सब प्रकृतियां पाप रूप हैं। तो कहते पुण्य प्रकृतियां 42 हैं और पाप प्रकृतियां 82 हैं। इस प्रकार से भेद की अपेक्षा देखा जाए तो 68 हो जाती पुण्य प्रकृतियां, अभेद की अपेक्षा से 42 हैं। इस प्रकार ये पुण्य और पाप प्रकृतियां हम अपने ही परिणामों के द्वारा बांधते रहते हैं। कर्म सिद्धांत तो अलग से अपन को 2-4 दिन बैठ करके और समझना चाहिए। ये अध्याय है इसी कर्म के बारे में, जो अपन बांधते हैं कर्म उनके बारे में ही ये अध्याय है। इस तरह एक कोड़ा कोड़ी सागर का 100 वर्ष है, मैंने जो है एक सागरोपम कह दिया था वो ठीक नहीं, एक कोड़ा कोड़ी सागर के पीछे कितनी आबादा पड़ती तो 100 साल की आबादा पड़ती, तो 70 कोड़ा कोड़ी के पीछे 7000 वर्ष हो गए। 100 वर्ष है तो 100 में 70 गुणा करो तो 7000 हो गए। हाँ ठीक।
हे गुरुवर शाश्वत